छाया आरवी को अपने बारे में बता रही थी और शान ने उसके लिए क्या क्या किया, कैसे वो यहाँ तक पहुँचा है, ये भी बता रही थी और आरवी बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। छाया चुप हुई तो आरवी ने कुछ सोचते हुए कहा, तुमने कहा तुम उन्हें हॉस्पिटल के बाहर मिली थी और तब उनके साथ अंशु थी जिसका तब जन्म ही हुआ था। हाँ, तब अंशु को देखकर ही पता चल रहा था कि उस बच्ची का जन्म कुछ देर पहले ही हुआ है। छाया ने उस पल को याद करते हुए कहा जब उसने शान को और उसकी गोद में अंशु को देखा था। आरवी ने फिर से सोचते हुए सवाल किया, क्या तुम जानती हो कि अंशु को जन्म देने वाली माँ कौन है और वो मिस्टर मल्होत्रा के साथ क्यों नहीं है? अपनी इतनी प्यारी और इतनी छोटी बेटी को खुद से दूर क्यों कर दिया उन्होंने? नहीं भाभी, अंशु को किसने जन्म दिया कोई नहीं जानता। पता है जब वो अंशु और मुझे लेकर घर आए थे तो बड़ी माँ, बड़े पापा सबने उनसे बहुत बार पूछा था कि जिस बच्ची को वो अपने साथ लाए हैं वो कौन है, उसकी माँ कौन है। तो भैया ने बस इतना कहा कि अंशु उनकी बेटी है, उसको जन्म किसने दिया उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब से वो सिर्फ उनकी बेटी है और उनके साथ ही रहेगी। बड़ी माँ ने इतनी बार कहा कि इतने छोटे बच्चे को उसकी माँ से दूर नहीं करना चाहिए, अगर वो उनकी बेटी है तो उन्हें उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए जिसकी बेटी को वो घर लाए हैं। पर भैया ने साफ साफ कह दिया कि उस मतलबी औरत का जिक्र दोबारा उस घर में नहीं होगा। अंशु सिर्फ उनकी बेटी है, उसकी माँ भी वो है और बाप भी वही है। चाहे कितना ही मुश्किल हो पर वो अकेले ही अंशु की परवरिश करेंगे और उन्होंने कभी इसमें कोई कमी भी नहीं छोड़ी। अंशु को हल्का सा बुखार भी हो जाता था ना तो वो रात रात भर जागकर उसका ध्यान रखते थे। उसके एक बार डैडी कहने पर कहीं भी क्यों ना हो, कितना ही जरूरी काम क्यों ना कर रहे हो, पर वो भागते हुए अंशु के पास आ जाते थे। सच में उन्होंने एक माँ और पिता दोनों का फर्ज अकेले निभाया है, पर फिर भी अंशु की जिंदगी में माँ की कमी को पूरा नहीं कर पाए। अंशु की हर इच्छा वो उसके बिना बोले ही पूरी कर देते थे। कितना ही परेशान हो, अंशु उन्हें कितना ही तंग करे, वो उस पर कभी गुस्सा नहीं करते थे, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। लेकिन जब वो मम्मा लाने की जिद करती तो वो उस पर गुस्सा कर देते थे। शायद जिसने अंशु को जन्म दिया उसने भैया को कोई बहुत गहरा जख्म दिया है, तभी उसका जिक्र होते ही उनका गुस्सा सारी सीमाएं तोड़ जाता है। मुझे तो लगता है उस औरत को अंशु से कोई मतलब था ही नहीं, वरना अपनी इतनी छोटी बच्ची को कोई माँ खुद से दूर कैसे जाने सकती है? शायद उन्हें बच्चा चाहिए ही नहीं होगा, तभी तो अंशु को कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने कोशिश नहीं की? हो सकता है कि उन्हें अंशु मिली ही ना हो। तुम्ही ने तो कहा कि मिस्टर मल्होत्रा अंशु को लेकर आए थे, तो उन्होंने अंशु की माँ को सच पता ही ना चलने दिया हो, उस बेचारी को पता ही ना हो कि उसकी बेटी भी है। आरवी ने उसके चुप होते ही सवाल किया। उसका सवाल सुनकर छाया हंसने लगी तो आरवी उसकी कंफ्यूज नज़रों से देखते हुए बोली, तुम हंस क्यों रही हो, मैं मजाक नहीं कर रही। भाभी, अभी तक आप भैया को जान नहीं पाई हैं, वो आज भी अपनी माँ के प्यार के लिए तरसते हैं, वो कभी किसी बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकते। जिसने खुद ने किसी चीज़ की कमी को देखा हो, उस दर्द को सहा हो, वो कभी किसी दूसरे को वही तकलीफ वही दर्द नहीं दे सकता, और अंशु पर तो वो अपनी जान देते हैं, वो कभी उसे उसकी माँ से अलग नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, जब अंशु के लिए उन्होंने आपको यहाँ रहने दिया जबकि आप तो उनके लिए अजनबी थीं, तो अगर अंशु की सगी माँ अच्छी होती तो क्या उसे अंशु के लिए इस घर में जगह नहीं देते? भैया दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अंशु से करते हैं, वो उसके लिए कुछ भी करते हैं, और अगर किसी औरत के साथ उनकी एक बेटी है मतलब उनके बीच कभी ना कभी प्यार रहा होगा, और अगर नहीं भी रहा होगा तब भी जब वो आपको अंशु के लिए एक मौका दे सकते हैं, जब भी अब तो अंशु इतनी बड़ी है तो तब उसे उसकी माँ से अलग क्यों करते? जब उसका जन्म ही हुआ था तब तो उसे सबसे ज्यादा अपनी माँ की जरूरत थी। आपने नहीं देखा, उसकी माँ का जिक्र होते ही भैया का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है, मतलब साफ है वो औरत अच्छी नहीं है और अंशु की माँ कहलाने के लायक तो बिल्कुल नहीं है, वरना वो यहाँ होती आपके जगह। खैर छोड़िए, आप अभी भैया को ढंग से जानती नहीं है, जब उन्हें समझने लगेंगी तो आप अपने आप ये सब समझने लगेंगी, छाया ने मुस्कुराकर कहा और वहां से चली गई। पर आरवी को बुरी तरह इन सवालों में उलझा गई, वो बुत बनी खड़ी रह गई। सौरभ ने उसे यूं खड़े देखा तो उसके पास आकर बोला, क्या हुआ मैडम, क्या सोच रही हैं आप? आवाज़ सुनकर आरवी अपने ख्यालों से बाहर आई और उसके तरफ मुड़कर बोली, सौरभ भैया आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? 4 साल हो गए, 4 साल पहले ही सर अपने परिवार के साथ इस विला में आए थे, तभी से यहाँ काम कर रहा हूँ, पर आप क्यों पूछ रही हैं? आपको मिस्टर मल्होत्रा कैसे लगते हैं, मतलब आपको लगता है कि वो कभी किसी के साथ गलत कर सकते हैं? आरवी ने एक बार फिर सवाल किया। उसका सवाल सुनकर सौरभ ने मुस्कुरा कर कहा, दुनिया के सामने शांतनु सर जो हैं असल जिंदगी में वो उससे बिल्कुल उल्ट हैं।
हाँ थोड़े सख्त हैं, गुस्सा थोड़ा ज्यादा करते हैं, पर बहुत ही साफ दिल के आदमी हैं। यहाँ जितने लोग काम करते हैं उनमें से कोई भी आपको ये बता सकता है कि सर कितने अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा हर जरूरतमंद की मदद की है। हमारे परिवार का ध्यान भी ऐसे रखते हैं जैसे उनका अपना परिवार हो। कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। उन्होंने मुझे तब काम दिया था जब मैं काम के लिए दर दर भटक रहा था। उसके बाद से उन्होंने हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सर पर बनाए रखा है। हर जरूरत में हमारा साथ दिया है। इतना रहम दिल मालिक शायद ही किसी को मिले। वो दिखाते नहीं हैं, पर सबकी मदद कर देते हैं। 2 महीने पहले मुझे अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने उन्हें कहा भी नहीं था, बस परेशान रहता था, तो उन्होंने खुद सब पता करवाया और मेरी पत्नी के ऑपरेशन का सारा खर्चा भी उन्होंने उठाया। फिर भी उन्होंने मुझे कभी पैसे वापस करने के लिए नहीं कहा। सर कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। बड़ी मालकिन और बड़े साहब और छोटे साहब बताते हैं कि सर पहले इतने सख्त नहीं थे, बात बात पर इतना गुस्सा भी नहीं करते थे, पर वक्त और हालातों ने उन्हें ऐसा बना दिया है। पर आज भी उन्होंने अच्छाई और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा है। आप उनके साथ रहेंगी तो आप भी समझ जाएंगी कि वो बाहर से नारियल की तरह सख्त दिखते हैं, पर अंदर से उनका दिल बहुत ही साफ और कोमल है। वो अपने आसपास रहने वाले हर इंसान की खुशियों और जरूरतों का ध्यान रखते हैं। वो अच्छाई करते हैं पर जाहिर नहीं होने देते। यही तो उनकी सबसे बड़ी खासियत है। वो किसी की मदद भी कर देते हैं और उस इंसान को एहसास भी नहीं होने देते। सौरभ की बातें सुनकर आरवी सोच में पड़ गई। फिर उसने अपना सिर झटका और काम करने लगी। कुछ देर बाद वो कमरे में पहुंची और हमेशा की तरह बेधड़क कमरे में घुस गई। शान मिरर के सामने खड़ा बालों को सेट कर रहा था। इत्तेफाक से अब भी शान ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। पीछे से उसकी खुली पीठ नजर आ रही थी। उसका गठीला बदन एक बार फिर आरवी को मंत्रमुग्ध किए जा रहा था। शीशे में उसका अक्ष साफ नजर आ रहा था।
आरवी उसमें खोती उससे पहले ही उसमें खुद को संभाल लिया, उस पर से नजरें हटा ली और अंदर आते हुए बोली, हर बार मेरे सामने शर्टलेस होकर आना जरूरी है क्या? क्या आपको कपड़ों से परहेज है जो जब देखो अपनी बॉडी का प्रदर्शन करते रहते हैं? माना बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत मेहनत से आपने ऐसी आकर्षक बॉडी बनाई होगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बिना कपड़ों के घूमकर सबको अपनी बॉडी दिखाते फिरें। टू बी कंटिन्यूड।